आठवां रेखा, ब्रैकेट में भगवती चरण वर्मा, पृष्ठ संख्या 241। भगवती चरण वर्मा कृत रेखा उपन्यास की प्रमुख पात्री रेखा है। वह 20 वर्षीय अनिंद सुंदरी तथा एमए फाइनल दर्शन शास्त्र की प्रतिभा संपन्न छात्रा है। रेखा डॉक्टर प्रभाशंकर के व्यक्तित्व से प्रभावित है। वैसे डॉक्टर प्रभाशंकर एक समय में एक ही छात्र को लेते हैं, किंतु रेखा के लिए एमए डिजर्टेशन के निबंध में भी उसका मार्गदर्शक होना स्वीकार करते हैं। इसमें वे परस्पर एक दूसरे के निकट आते जाते हैं और श्रद्धातिरेक में रेखा भारद्वाज रेखा शंकर होना स्वीकार कर लेती है। किंतु रेखा से विवाह के पूर्व प्रोफेसर प्रभाशंकर अनेक चेक काट चुके थे। रेखा ने श्रद्धातिरेक में आकर प्रोफेसर से विवाह करने का जो निर्णय लिया, उसके कारण अब उसे पछताना पड़ रहा है। वह उसकी वासना को शांत नहीं कर सकते थे। वह इस कारण रात भर तड़पती रहती है। उसके जीवन में खतरनाक मोड़ उस समय आता है जिस समय जर्मनी से लौटे प्रभाशंकर के पुत्र रमाशंकर, जो शक्ल सूरत में प्रभाशंकर की ही तरह दिखता है और देवकी का पुत्र था, जो अपनी माँ के साथ रेखा को मिलने आता है। रेखा उसे शॉपिंग कराने के लिए ले जाती है। गाड़ी में बैठते समय रेखा रमाशंकर से प्रभावित हो जाती है। उसका हाथ अचानक उसके कंधे पर चला जाता है, किंतु उस समय विवेक ही उसे बचा पाता है। उसी प्रकार वह अपनी वासना की तृप्ति के लिए अपने मन में भटकाव लिए फिरती है। रेखा के भाई अरुण के मित्र सोमेश्वर दयाल ने जब उसे अपने बाहु पास में लिया, उस समय वह ऊपरी तौर पर उसे मना कर रही थी, परंतु भीतर से वह उस पागल प्रवाह में बरबस ही बह रही थी। रेखा की इस घटना के बाद और हिम्मत खुल जाती है और उसके बाद उसके जीवन में एक के बाद एक पुरुष आते हैं। शशिकांत, निरंजन कपूर, शिवेंद्र धीर, मेजर यशवंत सिंह और योगेंद्र मिश्र। शशिकांत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में मिसेस चावला के साथ उसे मिलता है। वह प्रभाशंकर का भूतपूर्व छात्र था। वह रेखा के साथ प्रेम पास में बंद कर गुरु दक्षिणा चुकाने का अच्छा मौका खोज निकालता है। निरंजन कपूर, जो मिसेज रत्ना चावला की पुत्री सीरी का भावी पति है, रत्ना चावला अपने दामाद से ही रंगरलिया मनाती है। रेखा को सीरी से सहानुभूति थी, इसीलिए उसकी माँ से उसके भावी पति को अपने बंधन में लेकर उसे मुक्त करती है। मसूरी में वह खूब रंगरंगलियाँ खेलते हैं और निरंजन का सिगरेट केस डॉक्टर प्रभाशंकर के तकिए के नीचे रह जाने पर वे पकड़े जाते हैं। इस घटना के बाद प्रोफेसर प्रभाशंकर के मन में रेखा के लिए संदेह पनप जाता है, किंतु रेखा की यह आदत नहीं जाती। वह शिवेंद्र धीर को भी पाना चाहती थी क्योंकि उसमें गजब का आकर्षण था। मेजर यशवंत सिन्हा से वह पृष्ठ संख्या 242 बंबई में मिली थी और सोमेश्वर से तो उसे गर्व भी रहता है, किंतु जब वह सुनती है कि सोमेश्वर अमेरिका में पागल हो गया है, तो वह उस पागल का गर्भ धारण करना नहीं चाहती और उसे गिरवा देती है। किंतु इन सब के बावजूद वह योगेंद्र को तन और मन से चाहती थी तथा योगेंद्र को लेकर यूनिवर्सिटी में चर्चा भी होने लगी थी। निरंजन कपूर वाले प्रसंग से प्रोफेसर प्रभाशंकर का अहम टूट जाता है और वे लो ब्लड प्रेशर और हृदय के दौरे के हल्के प्रहार से टूट जाते हैं और धीरे धीरे उनमें दाएं पैर को लकवा मार जाता है। दूसरी तरफ रेखा देवकी को बुला लेती है और स्वयं डॉक्टर योगेंद्र के साथ अमेरिका भाग जाने का प्लान बनाती है, किंतु अंतिम समय भावुकता की विजय होती है। वह प्रोफेसर को मरणासन्न अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकती और गाड़ी लेकर जब एरोड्रोम पहुंचती है, तब प्लेन जा चुका होता है। निराश होकर लौटती है। तब तक तो प्रोफेसर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इस प्रकार रेखा के जीवन की कहानी का अंत त्रासदपूर्ण स्थिति में होता है। नौवा उषा, ब्रैकेट में नरक दर नरक। ममता कालिया के उपन्यास नरक दर नरक में उषा का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली दिखाया गया है। उसमें हम एक प्रकार का पैनापन, असहमति तथा चुनौती का भाव देख सकते हैं, जिसके रहते हुए वह जगन को भी उसकी ओर प्रभावित करके रख देती है। दोनों में मित्रता भी बन जाती है और वे दोनों ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं कि शारीरिक स्तर पर एक दूसरे को परितृप्त करने के अवसर मिलने लगते हैं और वे विवाह भी कर लेते हैं। लेकिन विवाह के उपरांत जगन आर्थिक स्थिति में फंस जाता है। वह 318 रुपए मासिक वेतन में उषा के लिए सोने की जंजीर तो क्या, टॉनिक की एक बोतल और बाटा की एक जोड़ी चप्पल तक नहीं ला सकता। जगन को कॉलेज के किसी कारण में फंसा कर निकाल दिया जाता है। वह इलाहाबाद में अपना प्रेस खरीद लेता है। उस व्यवसाय में व्यस्त होने के कारण उषा को वह समय नहीं दे पाता। इसी बीच उषा एक बेटे को जन्म देती है। उषा जगन की इन व्यस्तताओं को देखकर समझने लगती है कि जगन की अपेक्षाएं बदल गई हैं। वह उसे अपनी किसी बात में शामिल नहीं करता। वह व्यवसाय में डूबकर धीरे धीरे उषा को भूलता जाता है और अंत में उषा की जिंदगी एक नरक के समान हो जाती है। पैराग्राफ चेंज। 10वां, सीता गुप्ता। नरक दर नरक। ममता कालिया के इस उपन्यास में सीता एक विद्यालय की अध्यापिका है। वह एक अध्ययनशील, उत्साही एवं परिश्रमी महिला है। वह संस्कृत में एमए है, किंतु हिंदी क्लास भी अच्छी तरह पढ़ाती है। वह पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करती है। एक एक कवि को पढ़ाने के लिए हफ्तों उसके लिए परिश्रम करती है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। इतना अध्ययन शायद कोई शोध छात्र भी न करते होंगे जितना वह लेक्चर तैयार करने में करती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ नरक दर नरक, पृष्ठ संख्या 188। वह गृहस्थी वाली है। उसके 3 बच्चे हैं और पारिवारिक व्यवस्थाओं के बावजूद वह अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करती है। दूसरी ओर उसका पति शंकाशील स्वभाव का है। वह सीता को शंका की नज़र से देखता है। वह कहाँ जाती है, क्या करती है, उन सब का हिसाब वह रखता है। एक बार उस पर चरित्र लांघन का आरोप भी लगाता है। इस पर सीता घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, किंतु सीता के इस निर्णय से विनय महोदय कुछ ढीले पड़ जाते हैं और उससे क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि फिर एक तरफ दूध देने वाली दुधारू गाय नहीं रहेगी। पैराग्राफ चेंज। पृष्ठ संख्या 243। सीता विनय के व्यवहार से इतनी क्षुब्ध रहती है कि पत्नी तथा माँ की अपेक्षा स्वयं को विनय के घर की नौकरानी तथा आया समझने लगती है। पति के ऐसे क्रूर, शंकाशील तथा असहयोगी व्यवहार के कारण उसके भीतर की यौनिक्षा भी मर सी जाती है। अतः बिस्तर में साम्यवाद स्थापित करने की विनय की कोशिशें कई बार बेकार जाती हैं। विनय की झुंझलाहट तथा आक्रोश का एक कारण यह भी है, शारीरिक तथा मानसिक क्लांत तथा पति द्वारा निरंतर लांछित होने के कारण वह सोचती है कि विनय के साथ उसके संबंध में न सम है न योग, अतः उसे लेकर मन में कोई कामेक्षा नहीं पनप पाती और वह शनै शनै मनोवैज्ञानिक ठंडेपन का शिकार होती जाती है। पति इसे अन्यथा लेने लगता है। उसमें उसे विश्वासघात की बू आने लगती है। वस्तुतः जब स्त्री नौकरी करती है तो पति को उसे आराम देना चाहिए और उसके मन को बहलाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि उसे शारीरिक संबंध के लिए ही प्रयोग किया जाए तो शिक्षित नारी इस अवस्था को भोगने के लिए तैयार नहीं हो पाती। इस संदर्भ में डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ के विचार हैं। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। कामकाजी पत्नी तत्काल समर्पण को व्यक्तित्व की चुनौती समझती है, अपने अस्तित्व को अर्थहीन समझती है। इस प्रकार पत्नी की सेक्स संभोग के प्रति उदासीनता दाम्पत्य जीवन के सामंजस्य को बर्बाद कर देती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ क्योंकि समय एक शब्द है, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, पृष्ठ संख्या 509। इस प्रकार सीता की समस्या उषा से बिल्कुल दूसरी तरह की है। उषा का पति व्यवसाय में डूबकर उसे भूलता जाता है, जबकि सीता गुप्ता अपनी नौकरीगत व्यवस्थाओं के कारण विनय से दूर होती जाती है। दोनों के अपने अपने नरक हैं।